सज्जनों, आप सबको नमस्ते। ईशोपनिषद की चर्चा में दूसरे मंत्र की चर्चा कर रहे थे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। सो पिछले चार अलग अलग एपिसोड में हमने चर्चाएं की। फर्स्ट था कि वन कैन लीव ए लॉन्ग हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ ओनली इफ हिज लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड देर इज नो अदर वे टू लीव ए हेल्दी एंड हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। इट्स ओनली वे बी एक्टिव। नंबर टू, जब आप एक्टिव होंगे मतलब कुछ करेंगे तो नेचुरली विल गेट सम रिजल्ट्स। जब आप रिजल्ट पाते हैं या कुछ अचीव करते हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है या नहीं करता, इट्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन या उससे कम है, ज्यादा है, आपको फील होता है कि आप फेल हो गए, सक्सेसफुल हुए, तो इट्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। हमने उनकी चर्चाएं की, अलग अलग पांच फैक्टर की। लाइफ में, प्रोफेशन में, जो हम काम करने के बावजूद भी, कुछ लोग सेम काम करने के बावजूद भी सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उसमें टाइम, प्लेस, एबिलिटी, ट्रेनिंग, टूल्स, एफर्ट्स और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट एक्शंस। जब हम काम करते हैं, कुछ रिजल्ट मिलता है या कुछ अचीव करते हैं, ये तो दिखता है, बट इन सेम टाइम देयर इज समथिंग गोइंग ऑन अंडर करेंट जो इनविजिबल है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। मतलब आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं, मेंटली, फिजिकली और ओरली कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते हैं, तो भी कुछ हमारे अंदर घट रहा है, हमारे अननोइंगली, इनविजिबली। उसी का नाम है लॉ ऑफ कर्मा, जो बहुत ही साइंटिफिक, रैशनल एंड लॉजिकल है। वो क्या है कि हमारे माइंड में वो उन सब कामों का इम्प्रिंट बना रहता है, स्टोर होता रहता है, जिसे हम कहते हैं संस्कार। सबकॉन्शियस मेमोरीज बनते हैं। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आपके अनजाने में उसकी हिस्ट्री शीट में वो सब सेव्ड होता रहता है, आपने कब, किस समय क्या किया। वो माइंड में एवरी सिंगल थिंग जो हमने देखा, सुना, जाना, सब स्टोर होता है। वो स्टोर करते क्या है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को, हमें हमारे जाने बिना ही वो इन्फ्लुएंस कर देता है। फिर धीरे धीरे हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी वैसी होती है जैसा हमारा सबकॉन्शियस मेमोरी है। ऐसा नहीं होता जैसा आप पढ़ते हो, लिखते हो, ट्रेनिंग लेते हो, मानते हो। हम तो मानते हैं कि ये गलत है तब भी वही करते हैं, हमें मानते हैं कि ये सही है तब भी उससे नहीं होता। सबको पता है सुबह उठने का क्या फायदा होता है, 4 बजे, 5 बजे, जल्दी सोने का क्या फायदा है, किसको नहीं पता, सब पढ़े लिखे हैं, पर होता नहीं है। सबको पता है गुस्सा करने में दूसरों का जो नुकसान हो ना, खुद का कितना नुकसान है, पर होता नहीं है। बहुत कुछ चीजें हैं, क्यों नहीं होता है। सबको पता है हार्ड वर्क करना कितना जरूरी है, पर होता नहीं है। सबको पता है हार्ड वर्क के बाद रेस्ट करना भी जरूरी है, बहुत लोग करते नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग या एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन को पाने से लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होता है। लाइफ चलती है आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी से। आपका हाथ कब उठेगा, क्या उठेगा, वो आपके सो कॉल्ड नॉलेज से नहीं चलता, जो आपके माइंड में ऑलरेडी फीड हो रखा है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा लास्ट एक्सपीरियंसेस, जो कुछ हमने पढ़ा, जाना, सुना, जो पास्ट है, वो सब हमें मजबूर करते हैं वैसा बिहेव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम हेल्पलेस हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप जैसा चाहें ऐसा मोल्ड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको उतना ही फोर्स, उतने ही एनर्जी और उतने के साथ एफर्ट करना पड़ेगा। कोई मेरी आदत या मेरा जो स्वभाव है, नेचर है, वो 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर है जो मैं अब बदलना चाहता हूं, तो हो नहीं रहा है। मैंने कहा क्या करूं, मैं चाह कर भी नहीं होता है। तो तुमने क्या किया? जी मैंने कोशिश की। क्या कोशिश की? छोड़ने की। कितने दिन? एक दिन किया, नहीं हुआ। दूसरे दिन किया, नहीं हुआ। तीसरे दिन छोड़ दिया। फिर क्या किया? जी डॉक्टर के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास गए, प्रीस्ट के पास गए, आचार्य के पास गए, बहुतों के पास गए। उन्होंने इधर उधर की बहुत सारे बातें बताई, उससे कुछ नहीं हुआ। कुछ होगा भी नहीं, भगवान आ जाए तो भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप कोई 15 साल का जो मैला जमा हुआ है आपके कपड़े पर, आप कहेंगे एक ही वाश में वो साफ हो जाए, वो होना नहीं है। बिल्कुल वैसे ही माइंड में जो इतना हैवी इम्प्रिंट बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए आपके एफर्ट में भी उतने ही हैवीनेस चाहिए, उतनी ही एनर्जी चाहिए, उतने ही टाइम चाहिए। पर हमारे पेशेंस नहीं होता है, हम सोचते नहीं होगा, जैसा है वैसा चलने दीजिए, ऐसा नहीं है। तो उसको कहते हैं क्लफ कर्मा, जो हमारे फ्यूचर को, हमारे प्रेजेंट को मॉडिफाई करता है। हमें पता नहीं होता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ, मैं ऐसे फैमिली में क्यों पैदा हुआ, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, मेरे टैलेंट इतना कम या ज्यादा क्यों है, या आज मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे दोस्त मेरे से अलग क्यों है, मेरे भाई बहन मेरे से अलग क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं। वह ऐसा क्यों हूं ये फिल्मी गाना सिर्फ नहीं है, ये फिल्मी गाना भी है। वो ट्रूथ है, क्योंकि ये हमारे अपने द्वारा, हमारे द्वारा किए गए काम, एक्सपीरियंस, अनुभवों का ऑल टोटलिटी है। इसी को कहते हैं लव कर्म, जो हमारे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट को मोल्ड करता है। तो अगर यही सब हमें मोल्ड करता है, तो रास्ता क्या है इसे छुटकारा पाने का? उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सुख मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सुख भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, पर दुख भी बहुत मिलता है। और हम इसे छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं दुख से। जो छोटी मोटी रिमेडीज अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, फिर खराब हो जाते हैं। परमानेंट सल्यूशन चाहिए, और सबसे बड़ा सल्यूशन ये मौत रूपक दुश्मन से बचने का। ये जिंदगी भर डराता है कब मर जाए, नहीं चाहते। बोले घबराने की कोई गिल्टी फीलिंग की जरूरत नहीं कि आप मरना नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता जी। चींटी भी नहीं मरना चाहता, पेड़ पौधों में भी नहीं मरने की इच्छा है, किसी में भी नहीं है। अगर आपको कोई दिखे मेडिकल में, आपको लग रहा है कि वो मरने को तैयार है, नहीं, वो जस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। आप कुछ उपाय नहीं है, इसीलिए बोलता है आप जो होगा। पर एक्चुअली कोई नहीं मरना चाहता, क्योंकि मरना अपने आप में बड़ा दुखदायी चीज है। एक मिनट, तो इसीलिए कोई मरना नहीं चाहता। और उससे उपाय क्या है छुटकारा पाने का? तो छुटकारा पाने का उपाय है कि जो कर्म और उसकी जो लिंक है, कर्म और जो उसका फल है, उससे हमें उसको डीलिंक कर सकें। जब तक हम काम करते रहेंगे देवियों सज्जनों, तब तक, एक मिनट प्लीज, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। तो जो कुछ भी हम काम करते हैं, उसके हमारे माइंड के स्टोर में कुछ ना कुछ जाता रहता है। तो जाता रहता है, अगर हमने कर्म का फल अभी नहीं भोगा, तो फिर आज नहीं कल फ्यूचर में भोगेंगे। देखना क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऑन हुआ। ओके ओके, ठीक है, मैं कर लूंगा। Sorry for interruption. तो आज नहीं कल भोगेंगे और हमारे स्टोर हाउस में इतने सारे कर्म पड़े हुए हैं भोगने के लिए, तो इस जीवन में नहीं भोग पाते हैं तो फिर हमें एक और लाइफ लेना पड़ता है भोगने के लिए। जब अगला लाइफ मिलता है उसमें भी हम कुछ ना कुछ करते हैं, जब कुछ ना कुछ करते हैं उसमें भी फिर और कर्म करते हैं तो उसके भी अपने संस्कार बनते रहते हैं। इस तरह नए नए संस्कार बनते रहते हैं और हम फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे स्टॉक करते रह जाते हैं जिसे हमारा जन्म होता रहे। तो छुटकारा पाने का उपाय क्या है ये जन्म और मृत्यु की खेल से, कि ऐसा कर्म कुछ बचे ही नहीं, कर्मों का कोई संस्कार या कोई इम्प्रिंट या कुछ बचे ही नहीं कि अगले लाइफ के लिए, जन्म के लिए कोई मैटेरियल बना हुआ हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कर्म करें और उसका इम्प्रिंट ना बने, संस्कार ना बने? बोले है रास्ता है, तो उसी रास्ते का नाम होता है कर्मयोग। मीन्स आप डर के मारे काम मत छोड़ देना, क्योंकि काम करने से संस्कार बनते हैं, संस्कार करने से भोगना पड़ता है, दुख भी होता है सुख भी होता है, और सुख दुख होता है तो आप फिर आपको जन्म मृत्यु के चक्र में भी पड़ना पड़ता है इस तरह। तो इसे अच्छा है कि काम छोड़ दें। और यकीन मानिए लाखों करोड़ों लोग खास करके हमारे कल्चर में काम धंधा छोड़ के बाबा बनते हैं, सिर्फ इसीलिए कि काम करने से संस्कार बन जाएगा। उनको ये बताया गया है कि दुनिया माया है, काम धंधा छोड़ो, बस हरि नाम भजो और कुछ नहीं रखा है। शास्त्र कहता है नहीं, ये कोई सल्यूशन नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ जाओ। क्या क्या छोड़ोगे? खाना छोड़ दोगे, पीना छोड़ दोगे, बैठना छोड़ दोगे, उठना छोड़ दोगे, सोना छोड़ दोगे, देखना छोड़ दोगे, सुनना छोड़ दोगे, क्या छोड़ोगे? ये सब तो कभी भी नहीं छोड़ सकते हो, चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हो। तो क्यों छोड़ने की बात करते हो? छोड़ने की जरूरत नहीं, जो करना है करो। चेंज क्या करें? सिर्फ एटीट्यूड चेंज कर दो, ऊपर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर माइंड को, माइंड सेट को चेंज कर लो, फिर देखना वही आद काम जो दूसरे करते हैं और जो योगी करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर जो होता है अंदर से होता है, अंदर फर्क है, इसीलिए एक योगी है, एक सन्यासी है, एक तपस्वी है, एक आम आदमी है। तो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, नॉट योर वर्क और प्रोफेशन। अगर एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो भले से भले ऑफिस में भी, वर्क प्लेस में भी आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आपकी अपने बॉस से नहीं बनती है, आपके कुछ अपने को वर्कर से नहीं बनता, तो आपको लगता है ये वर्क प्लेस मेरे लिए काम नहीं करता, बेकार है, फ्रस्ट्रेशन में आप जीतते हैं, आपको स्ट्रेस बढ़ता है, घर आकर आप परेशान होते हैं, रात को नींद नहीं आती है, ऑफिस जाने को मन नहीं करता है, काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो क्या लगता है बहुत सारे लोग काम छोड़ देते हैं, छोड़ के नया काम ढूंढते हैं। को आपको लगता है कि दूसरे जगह वो खुश होंगे? नहीं, कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम काम में नहीं है, एटीट्यूड में है। आप दूसरों से कैसे डील करते हैं, काम को किस रूप में लेते हैं? लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया, काम खराब या अच्छा नहीं होता है, काम के पीछे का जो एटीट्यूड है वो या अच्छा या बुरा होता है, इसीलिए हम उस काम से या तो खुशी लेते हैं या दुख लेते हैं, परेशान होते हैं। इसीलिए जो जरूरी बात है कि वो एटीट्यूड को चेंज करने का, उसी काम को करते हुए अगर आप ऐसे एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, आप योगी बन जाते हैं। और आप मंदिर में प्रार्थना करते हुए भी दिन में 5 घंटे पूजा उपासना हवन जो कुछ भी धार्मिक कार्य करते हुए भी आप बहुत दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेसफुल रहते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रिलीजियस थिंग तो इसीलिए बनाए गए थे कि आप खुश रहें इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी। तो खुश आप क्यों नहीं हो पाते हो? क्योंकि आप मंदिर में बैठ के भी ऐसी एटीट्यूड लाते हो जो खुशी के ठीक अपोजिट है। आप अगर यहां भी पॉलिटिक्स करते हो, आप अगर रिलीजन में भी एक्सपेक्टेशन रखकर चलते हो, नेगेटिविटी रखते हो, आपके एंगर पर कंट्रोल नहीं है, जेलेसी पर कंट्रोल नहीं है, इल्यूशन पर कंट्रोल नहीं है, वगैरह वगैरह, ग्रीड पर कंट्रोल नहीं है, अटैचमेंट पर कंट्रोल नहीं है, फिर तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी अटैच्ड हो जाते हो। गए थे गुरु के पास गुरु ढूंढने, क्यों जी? क्यों जी? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, परम सुख चाहिए, ईश्वर का ज्ञान चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आप लोगों की इंटरेस्ट ना हो, बहुत सारे लोगों का होता है, छोड़ छाड़ के भागते हैं आश्रमों में, गुरुओं के पास, बाबाओं के आश्रमों में। देखिए भीड़ की कमी नहीं है, स्टोर में जितना भीड़ है, सिनेमा हॉल में जितना भीड़ है, उसे दुगुना भीड़ आपको पैस्टर के पास, स्वामी जीयों के पास, आश्रमों में भीड़ मिलता है, कमी नहीं है। मतलब आप ना सोचे कि हमारी इंटरेस्ट नहीं तो आप क्यों बोल दो, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के इंटरेस्ट है। जाते क्या करने के लिए? जी आत्मज्ञान, बड़े बड़े शब्द होंगे, आपको थोड़ा लगेगा हेवी हो जाता है, हमें तो ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो आप आत्मज्ञान बड़ी बात कर रहे हैं। पैसा कहां मिलेगा बताओ, घर कैसे बनेगा बताओ, गाड़ियां कैसे मिलेंगी, बच्चे क्या करेंगे ये बताओ, बीवी के साथ कैसे चलेगा ये बताओ, ज्ञान की तो छोड़ो, ज्ञान तो हमें नहीं चाहिए, आप आत्मज्ञान की बात क्यों कर रहे हो? कभी कभी डर लगता है कोई ज्ञान की बात ज्यादा करने पर, लोग उमड़ जाते हैं। ये सब बताओ कुछ रिलेशनशिप के बारे में, इधर उधर के बारे में, तब तो काम की चीजें। अरे आत्मज्ञान बड़ा हेवी वर्ड हो जाता, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सो कल्ड आत्मज्ञान के पीछे पड़े जाते हैं, चले गए कहां, पहुंच गए किसी गुरु के पास, स्वामी के पास, बाबा के पास, जहां भी पहुंचे, ज्ञान लिया, अच्छा ज्ञान भी लिया, कोई खराब ज्ञान नहीं लिया, समझदारी ली, सब कुछ किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, करते करते वहीं चिपक गए, वो आश्रम में ही चिपक गए। जी आप कौन है? जी मैं अमुक का भक्त हूं। तो हो गया, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे बोझ थे, बहुत सारे बैगेज लेकर घूम रहे थे, मैं अमुक हूं, मैं अमुक जात का हूं, मैं अमुक देश का हूं, मेरा वो है, मैं वो हूं, मेरा प्रोफेशन वो है, ऑलरेडी आपकी बैगेज इतना था, और एक अटैचमेंट जोड़ लिया कि मैं अमुक का भक्त हूं, अमुक का शिष्य हूं, अमुक आश्रम से जुड़ा हुआ हूं। भाई गए थे तो राम पाने, अब ना राम मिला ना माया मिली। तो अगर आप गलत एटीट्यूड लेकर अच्छे अच्छे जगह भी जाते हैं, वो भी आपको परेशान ही करेगा। तभी तो आप देखते हैं जब गुरु लोग पकड़े जाते हैं, आजकल देखते हैं बहुत सारे पकड़े जाते हैं अलग अलग रीजन से, तो हजारों उनके फॉलोअर खड़े हो जाते हैं, गुंडागर्दी करने, रास्ता बंद करते हैं, जजों को गालियां देते हैं, पुलिसों को गालियां देते हैं। ये भक्त हैं, मोक्ष पाने आए थे। आश्चर्य आपको लगता होगा, नहीं आश्चर्य की बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है। एटीट्यूड चेंज नहीं किया, मेडिटेशन किया, जप किया, तप किया, हवन किया, पूजा पाठ किया, माला जपा, ईश्वर में भक्ति है, सब कुछ है, पर विथ बैड एटीट्यूड। अरे एक आदमी गंदे लोगों के बीच में काम करता है, एनजीओ में काम करता है, गंदे लोगों के बीच में, बुरे लोगों के बीच में, ये अल्कोहल या जो ड्रग एडिक्टेड लोगों के बीच में खुश है, माहौल बहुत खराब है, पर व्यक्ति खुश है क्योंकि उसका एटीट्यूड अच्छा है। चेंज योर एटीट्यूड, यू विल फाइंड योर ओवरऑल पर्सनालिटी विल बी चेंज्ड। ये जो एटीट्यूड चेंज है, ये फर्स्ट स्टेप है कर्म को योग में कन्वर्ट करने का। देवियों सज्जनों, बुरा काम तो छोड़ करना नहीं, वो तो अलग बात है, अच्छे काम के भी पिछले बार हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यूटी में आते हैं। अच्छे काम भी हमें बुरे रिजल्ट देते हैं। प्रॉब्लम है कि उसके बैकग्राउंड में हमारे मन में क्या चल रहा होता है, किस तरह का इंटेंशन है, इंटेंशन की इंटेंसिटी कैसी है और क्या एटीट्यूड है। अच्छे काम हमारे लिए नुकसान कर सकते हैं, ज्यादातर लोग होते भी हैं, क्योंकि अच्छे काम का एक साइड इफेक्ट होता है, दैट इज ईगो। वो ईगो को बनाता है, फिर हमें दूसरे लोग गंदे लगने लगते हैं, बुरे लगने लगते हैं। पैसा ना कमाना, हार्डवर्क ना करना ये बुरी बात है, पाप है जी। हार्डवर्क करना अच्छी बात है, खुद पैसा कमाना अच्छी बात है, मांगकर खाना पाप है, मेहनत ना करना पाप है, मेहनत करना पुण्य है, अच्छा काम है। पर उस मेहनत करके, हार्डवर्क करके कमाए हुए धन, ज्ञान, पावर जो भी कमाया, उससे अगर ईगो क्रिएट हुआ और आप दूसरों को छोटा समझने लगे, तो हम तो गए गुजरे हो गए। वो तो बेचारा गरीब है पैसे से, और हम तो स्पिरिचुअली कंगाल हो गए, मेंटली कंगाल हो गए। इसीलिए अच्छा या बुरे की बात नहीं, काम कोई भी करे, डिटैच्ड होकर करने की कोशिश करने की जरूरत है। ऐसा कुछ करे कि ईगो पनपे नहीं, और ईगो सामने से नहीं आता है, बैकडोर से आता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप तो चले थे समाज की सेवा करने, आप तो चले थे ईश्वर की भक्ति करने, आप तो चले थे गरीबों का भला करने, पर 10 साल के बाद पता चला भला आपने लाखों का किया, वो लाखों लोग उपहार भी पा गए, आपके कारण ही उनका भला हो गया, पर आप बर्बाद हो गए। क्यों? हम इतने इगोइस्टिक हैं, आपको भला न करने वाले सब पापी लगते हैं, बुरे लगते हैं, और आपको अब अवार्ड चाहिए, रिवार्ड चाहिए, स्टेज चाहिए, माला चाहिए, नहीं मिलता है तो दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, आपके सारे स्ट्रेस का कारण है। तो फिर आप कहते हैं कि देखो मैंने 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसा काम किया, इतना किया, वो किया, देखो आज मुझे उसका रिजल्ट मिला। प्रॉब्लम है कि इस रिजल्ट के लिए तुमने काम शुरू नहीं किया था। जब तुमने शुरू में काम शुरू किया कि मुझे किसी का भला करना है, किसी को हेल्प करना है, तब बिल्कुल तुम पाक साफ थे, बिल्कुल क्लियर माइंड था कि मुझे इसको हेल्प करना है। ग्रेजुअली वो डेवलप हुआ, क्या ईगो, मैं बेटर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं और अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, और जो नहीं कर रहे हैं वो खराब है। वो मैं इतना अच्छा बन गया, अब मैं दूसरों के बगल में बैठने को इन्फीरियरिटी समझता हूं, मेरे लिए बड़ा आसन चाहिए। और इसका परिणाम आप देखेंगे, ज्यादातर जो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, साधु सन्यासी आचार्य लोग, वो देखेंगे वो हमेशा ऊंचे आसन पर बैठेंगे, खाना उनका अलग जाएगा, दो चार भक्त आगे पीछे घूमना जरूरी है। किस बात की साधु भाई, इतना ईगो लेकर घूमते हो? होना यही चाहिए कि दूसरों के नीचे बैठ जाता चरणों में, तब तो समझ में आता है। पर तू तो सर के ऊपर बैठने की इच्छा करते हो और सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा साधु या योगी बन गया। ईश्वर और मेरे बीच में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वह है मेरा ईगो, कि मैं और मेरा और मेरे द्वारा। प्रॉब्लम है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसीलिए शास्त्र कहता है कि सरेंडर करो, सीखो सरेंडर करना, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। हवन, अभी हवन में आप लोग बैठे थे, मंत्र के आखिर में आता है ना, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। मैं तो 50 साल 100 साल के लिए आया हूं, तुम्हारे बनाए हुए चीजों में से कुछ मैंने कलेक्ट किया है अपने यूज के लिए, मैं भी चला जाऊंगा, वो सामान भी वहीं रह जाएगा, वो घर, वो पैसा, वो कपड़े, वो बैंक बैलेंस, वो ज्वेलरी, सब यहीं, वो नाम, वो शाम, वो सब यहीं रह जाएंगे। उनको क्या पता कि आप उनके पीछे क्या कर रहे हो? मंदिर बना रहे हो उनके लिए, मेमोरियल हाउसेस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उनको क्या पता? वो मर गया जो मर गया, कुछ नहीं बचता। पर हमारी मजबूरी है, हम बैगेज खाली करना ही नहीं चाहते। वो एयरलाइंस वाले लिखते हैं ना, ट्रेन वाले भी, एयरलाइंस वाले, जितना कम बैगेज लेकर आओ उतना अच्छा है अगर टूरिस्ट बनना चाहते। पर हमारी प्रॉब्लम है, हम ज्यादा बैगेज लेकर के चलना चाहते हैं। बैगेज क्या है? मेरा पोस्ट, मेरे पैसे, मेरे ज्ञान, मैं किस लेवल पर हूं। और हमें लगता है कि जितना बैगेज बढ़े लाइफ में उतना दम होता है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं तो बहुत बड़ा बैगेज है ना? मैं सीनेटर हूं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हूं, सीईओ ऑफ ए कंपनी हूं। चलो सीईओ कंपनी में ले लो जितना खुश होना है, पर हम छोटी छोटी चीजें और भी छोड़ते नहीं है। मतलब बड़ा होने पर भी जहां भी मौका मिलता है अपनी बैगेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ह्यूस्टन में 18-20 करीब मंदिर है, मतलब हिंदू मंदिर है। मोस्ट ऑफ मंदिर में फाइटिंग होती है, मतलब भक्तों में नहीं, जो मैनेज करते हैं। शुरू में तो आए थे कि अच्छा काम करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे, मंदिर बनाएंगे, लोग आएंगे। ये हमारे बगल में एक वो दुर्गा बड़ी है, वो बीच में एक महीने के लिए ताला लग गया था। दो ग्रुप हो गए, फाइटिंग चला, कोर्ट में गए, डिसीजन लेकर आए। सब जगह चलता है, सारे दुनिया में। मैं मंदिर का उदाहरण दिया क्योंकि मंदिर सबसे पवित्र स्थान है। कम से कम वहां बैगेज की, ईगो की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। किस बात की, क्यों ये हो रहा है? किसी ने पूछा क्यों हो रहा है, मैंने कहा पावर हैंकरिंग लोग है। बोले इसमें पावर कहां है, हैंकरिंग क्या है, ये तो मंदिर है। ऐसा नहीं है, मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज थोड़ी है कि भाई मैं आर्य समाज का सेक्रेटरी बन गया, दुर्गा बाड़ी का प्रेसिडेंट, में इसमें क्या रखा है? सेवा तो करते हैं। इनका यही तो कीड़ा है, आपको समझ में नहीं आता है। जरूरी नहीं कि उसमें मिलता क्या है, पैसा, नाम, यश, कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा बैगेज बढ़ जाए, थोड़ा फील होता है कुछ मैं हूं, बस दैट्स इट। मैं मंदिर गया, हजारों लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, नॉर्मल होकर आते हैं। मैं गया, मैं एमसी होकर जाऊंगा, थोड़ा लिटिल बिट उनसे बड़ा हूं। एमसी तो 50 होंगे, मैं सेक्रेटरी हूं, प्रेसिडेंट हूं, थोड़ा और ऊंचा। बैगेज चाहिए अपने आप को काउंसल करने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई। मंदिर में भी हम ईगो ढूंढते हैं। दुनिया तो छोड़िए, जो मंदिर था कि ईगो को छोड़ने के लिए, यहीं आकर ईगो ढूंढते हैं। कुछ मिलना जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिलता है कि नहीं, नाम मिलता है कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इंसान का वो कीड़ा, ईगो का कीड़ा, वो छोटे से चीज में भी ढूंढ लेता है। एक ट्रेन में एक बार एक गांव का अनपढ़ आदमी जा रहा था, थोड़ा भोला भाला आदमी था, इनोसेंट था। तो उसने अपने जो बैग है वो अपने सर पे रख के बैठा था, टिकट लिया था, बैठा था। उसके बगल का जो साथी बैठा था उसने उसको बार बार बोला, भाई ये सर पे बैग क्यों रखे हो, नीचे रख दो। बोला नहीं रख सकता। बोले क्यों? ऐसा है कि मैंने अपने लिए टिकट लिया है तो मैं बैग तो मैं बैठ सकता हूं, बैग के लिए मैंने टिकट नहीं लिया। अगर बैग रख दूं तो ट्रेन के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बोझ के साथ मेरे बैग का बोझ भी गाड़ी उठाए, कि न गाड़ी के बोझ के लिए बैग के बोझ के लिए मैंने टिकट नहीं लिया। दिव्यों सज्जनों, हमारे ज्यादातर हमारे लाइफ में यही होता है। हम सोचते हैं मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैं बोझ हल्का कर रहा हूं धरती का, मैं बोझ हल्का कर रहा हूं दुनिया का, मैं बोझ हल्का कर रहा हूं फैमिली का। नहीं, मर जाओ दुनिया तब भी चलेगी, घर छोड़ के भाग जाओ तब भी दुनिया चलेगी, बच्चे चल सब चलेगा। किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है, रास्ता अपने आप कुछ ना कुछ निकल जाता है। हम अपने ईगो को सोचते हैं कि मेरे कारण दुनिया चल रहा है, मेरे कारण वो चल रहा है, मेरे कारण ये चल रहा है। सब ईश्वर की कृपा है, उसकी दी हुई टैलेंट है, उसकी दी हुई एनर्जी है, उसकी दिया हुआ शरीर है, उसकी दिया हुआ सब कुछ है, उसी के बस पर हम बल पर हम करते हैं, पर हम मानने को तैयार नहीं है। हम कभी भी डूअर नहीं बन सकते, कर्ता नहीं बन सकते, हम सिर्फ एजेंट बन सकते हैं। हम किसी हमारे द्वारा कुछ होता है, हम नहीं करने वाले होते हैं। जब ये सेंस अपने अंदर आ जाए, वो यज्ञ का इदन्न मम इसी बात को तो बताता है, ये मेरा नहीं है, तो फिर वो सरेंडरिंग नेचर आ जाता है, समर्पण। सब तुम ही तुम हो, मैं कुछ भी नहीं हूं। पर वो सरेंडरिंग कंडीशनल नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जब भी अच्छा मिल गया, पति या पत्नी भी बढ़िया मिल गया, घर भी अच्छा मिल गया, प्रमोशन भी ठीक चल रहा है, ये सब मेरे बहुत मेहनत का फल है। नौकरी चली गई, घर चला गया, बीमार हो गए, और बहुत कुछ हो गया, ये भाग्य का खेल है। ईश्वर तुम ही सहा करो। जब हेल्दी थे, मैं क्यों हेल्दी हो, एक्सरसाइज करता हूं, खाना कंट्रोल खाता हूं, लाइफस्टाइल ठीक रखता हूं, गुड। बीमार क्यों हो, किस्मत खराब है, ऐसा कैसे होगा भाई। बोला हेल्थ तो तुम्हारे मेहनत से आता है, और जब बीमार होता है तो वो किस्मत से आता है। ये कंडीशनल सरेंडरिंग है कि मेरी बीमारी तुम्हारे दया से तुम्हारे कारण आता है, पर मेरी अच्छी चीजें तो मेरे कारण आता है। इसीलिए हमारी भक्ति प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि बड़े हम कंडीशनल होते हैं, बड़े चालू टाइप के हैं, ईश्वर के साथ भी हम ट्रिक करते हैं। सरेंडरिंग 100% होना चाहिए, होल में होना चाहिए। जो मेरा है सब तुम्हारा है, या तो आप पूरा सरेंडर कर लो, मेरे खाने के थाली में कंकर भी आया तो तुम उसके जिम्मेदार हो, मेरे पास करोड़ों है या जीरो है तुम जिम्मेदार हो, या तो बिल्कुल सरेंडर मत करो ईश्वर के सामने, खुद को सरेंडर कर लो खुद के पास कि मैं ही अपना रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, बीमार हूं स्वस्थ हूं, सुखी हूं दुखी हूं, धनी हूं गरीब हूं, उसका अकेला अकेला मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो भी आप खुश खुश रहेंगे जी। ध्यान रखिएगा, क्यों, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो फिर आप उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अच्छी चीजों का रिस्पॉन्सिबल हम लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बुरी चीजों का दूसरों पर डाल दें, ना हम खुश रहेंगे ना दुनिया, कभी कुछ नहीं हो सकता। तो सरेंडर करना है तो पूरा अनकंडीशनल होता है, उसमें फिर कोई किंतु परंतु कुछ नहीं बचना चाहिए, जो है तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा, मन तुम्हारा, माँ बाप तुम्हारे कारण मिले, घर तुम्हारे कारण मिला, ये बुद्धि तुम्हारे कारण से, ये समझ तुम्हारे कारण से, इस शरीर मन बुद्धि के द्वारा कमाया गया हर वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारा है। अच्छा है तुम्हारा, बुरा है तुम्हारा, या तो अच्छा मेरा बुरा भी मेरा, दोनों तरफ करिए। फिर आपके सोने में, सूंघने में, बैठने में, उठने में, नाचने में, आपको हर जगह उस ईश्वर का फील होने लगेगा अगर आप पूरा सरेंडर कर देते हैं। सरेंडरिंग के लिए आपको फिजिकली कुछ नहीं करने का जरूरत है, बस मेंटली कल्टीवेट करने की जरूरत है उस सेंस को, सब कुछ तेरा, तेरे कारण मैं नाच पा रहा हूं या बैठ पा रहा हूं। मुश्किल होगा पर इम्पॉसिबल नहीं है, करके देख सकते हैं। हो सकता है उस फुल सरेंडरिंग करने के, सरेंडर करने के बाद आप रास्ते में आधे कपड़े दौड़ने लगे, आपकी हंसी में लोगों को पागलपन दिखने लगे, लोग आपको पागल समझेंगे पर आप अपने आप को नहीं समझेंगे। फिर आप कहेंगे लोगों का क्या करें, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे। जिस दिन आप समर्पण कर लेंगे तो लोग आपको पागल कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, चूहा कहते हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब तक आपने वो समर्पण भाव नहीं है तब आप केयर करेंगे कौन क्या बोलता है। सब तुम्हारा है, जिस दिन हो जाए फिर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर हम जो भी करेंगे वो कर्म फिर कोई इम्प्रिंट नहीं छोड़ेगा, फिर वो सब कर्म आप करते चलिए, भगवान उसका केयर करेगा। योग क्षेमम वहाम्यम, मैं तुम्हारा योग क्षेम सब वहन करूंगा, पर उसके लिए फुल सरेंडर चाहिए। वो नहीं होगा, मतलब कुएं में गिर रहे हैं, ये डाली पकड़ रखा है, भगवान बचा लो, बचा बचा तो डाली तो पकड़ ही रखे हो, फिर बचाएंगे? या तो डाली पर भरोसा रख, अपने पर भरोसा रख, सचमुच आप बच जाएंगे। अगर खुद पर भी भरोसा रखते हैं तो भी आपके बचने का चांस है, या ईश्वर पर भरोसा रखे तो भी बचने का चांस है, पर अगर दोनों जगह भरोसा रखते हैं कहीं नहीं बच सकते। मतलब आप कहते हैं डाली बचा ले, डाली समझते हो, ब्रांच पकड़ लिया आपने, इधर भी प्रार्थना करें डाली खींच गया तो भगवान बचा लेगा, तो भगवान सोचेगा तो डाली बचाएगा मेरा क्या काम है, वो ब्रांच सोचेगा तो भगवान बचाएगा मेरा क्या काम है। एक को पकड़िए, सरेंडर पूरा चाहिए ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, फायदा ही नहीं है, नुकसान करता है सरेंडर करना हाफ हाफ हुए में। देवियों सज्जनों, जब भी आप कुछ करेंगे अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, सुख होगा दुख होगा, लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। जो भक्त बन जाता है, जो योगी बन जाता है, मैं कपड़े बदलने वाले आश्रम में रहने वालों की बात नहीं कह रहा हूं, आम व्यक्ति जैसा भी है, जिस सिचुएशन में है, जिस वर्क प्लेस में, वहीं पर जब वो भक्त बन जाता है तो उसका अंदर और हमारे अंदर में क्या अंतर होता है? अंतर है कि वो सुख में भी दुख में भी बराबर रहता है, इक्वानिमिटी बनी रहती है। हमारा दुख में टूट जाते हैं, क्यों दुख में टूटते हैं? क्योंकि सुख में ज्यादा उछलते हैं। ये दो अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा जब लाइफ में अच्छा हो रहा हो, जितना ज्यादा सेलिब्रेट करता है, खुश होता है, या उतने ही दुख आने पर वो टूटेगा। ये दिन और रात का रिलेशनशिप है, ये ठंड और गर्मी का रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे पर एग्जिस्ट करते हैं। देवियों सज्जनों, दिन रात के बिना हो ही नहीं सकता, रात दिन के बिना हो ही नहीं सकती। दिन दिन है क्योंकि रात है, खाना खराब है क्योंकि अच्छा खाना भी होता है, अगर सारा खराब ही होता तो अच्छा खाना क्या होता, अच्छा अच्छा है क्योंकि खराब होता है। ये दोनों एक दूसरे एग्जिस्टेंस पर टिकते हैं, एक एक का एग्जिस्टेंस दूसरे पर टिकता है। सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी खुशी मनाए ध्यान रखिए लाइफ में दुख भी आएगा, पर दुख में टूटना नहीं, फेस करना होता है, सामना करना होता है। पर सामना करने की हमारी एबिलिटी अलग अलग है, क्यों? क्योंकि सुख को भी सामना करने की एबिलिटी अलग अलग है। हर आदमी सुख में अलग रिएक्ट करता है। अगर सुख में भी आप शांत हैं, कूल हैं, काम हैं, सब कुछ ईश्वर का जो है ठीक है, मेरा उसमें कुछ नहीं, तो दुख भी हल्के से आएगा, हल्के से चला जाएगा। अगर सुख में बहुत उछला तो दुख में जल्दी टूटूंगा। आप देखिए मोस्ट ऑफ जो सुइसाइड केस होता है या जो सेल्फ हार्मिंग केस होता है, आपको कहां मिलेगा? ग्लैमरियस फील्ड में, जो वो फिल्म इंडस्ट्रीज में होते हैं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, ये जो फैशन शो में जो होते हैं। क्यों? वहां बहुत जल्दी उनको खुशी मिलती है, पैसा बहुत मिलता है, नाम बहुत मिलता है, हर तरह के सुख सुविधाएं मिलती है, खो जाते हैं, प्यार करने वाले लाखों करोड़ों लोग मिलते हैं। और जैसे ही कमी आने लगती है, पॉपुलैरिटी घटने लगती है, रोजगार नहीं मिलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ देता है, छोड़ देती वगैरह वगैरह कुछ भी होता है, पता ही नहीं क्या करें, अब सह नहीं पाते हैं, उनको लगता है सुइसाइड करना है, या तो वो ड्रग लेते हैं। ज्यादातर ड्रग और एडिक्शन आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिलेगा, जहां सुख की जितना लेवल ज्यादा होगा वहां दुख का लेवल भी ज्यादा होगा। बहुत कम गरीब लोग आपको सुइसाइड करते हुए मिलेंगे, जबकि दुख उनके लाइफ में ज्यादा है, पर उनमें इम्यून सिस्टम ज्यादा है दुख को सहने का। देवियों सज्जनों, सुख और दुख दोनों लाइफ के पार्ट हैं। हमारी इच्छा हो ना हो, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, चाहने पर नहीं आता है, आना आएगा। तो अच्छा आदमी कौन है? अच्छा का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड और बैड, स्मार्ट कौन है? जो पहले से ही तैयार हो कि कुछ भी आए आई एम रेडी टू फेस इट, सुख आए ठीक है, दुख आए ठीक है। तो जब आप दोनों को फेस करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर जीवन बदल जाता है। फिर लाइफ वो कब होगा? जब आपकी माइंड में वो इक्वानिमिटी आ जाती है। गीता का ये दो तीन श्लोक कह के खत्म करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, बोलिए, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। द अंडरलाइनिंग फैक्टर इज समत्वम योग उच्यते। इवननेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा, नथिंग एल्स। अगर आपकी माइंड इवन हो जाता है, इवन कब? सुख में भी ऐसा ही है, दुख में भी ऐसा है। अगर आपकी माइंड ऐसा है, हार्ट बीट सुख में बढ़ जाता है, दुख में घट जाता है, तो तैयार रहिए स्ट्रेस भोगने के लिए, टेंशन पाने के लिए, रात की नींद की गोली खाने के लिए। अगर दोनों परिस्थिति में आपके माइंड में इवननेस बना रहता है तो आप योगी हैं। आप घर में रहते हैं, वर्क ऑफिस में रहते हैं, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, कहीं भी रहे, आप योगी हैं। अगर आप दोनों परिस्थिति में आपका माइंड एक जैसा रहता है, कम रहता है कम योगी, ज्यादा रहता है ज्यादा योगी, बिल्कुल नहीं रहता है तो बिल्कुल योगी नहीं है। गीता कहता है दुख में जो टूटता नहीं है, सुख में ज्यादा उछलता नहीं है, अच्छा बुरा हर परिस्थिति में जो एक जैसा रहता है, उसी को ज्ञानी समझना, उसी को योगी समझना, उसी को सन्यासी समझना, उसी को भक्त समझना, जो समझना है उसी को समझना, क्योंकि वही सब कुछ है, बाकी तो दुखी रहेंगे ही देखेंगे। देवियों सज्जनों, यही एकमात्र रास्ता है ईश्वर पर वो कुर्बन निवेह कर्माणी का, कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जित हम काम भी करें उसका फल भी भोगें, पर फल से अफेक्टेड ना हो, माइंड को इतना स्ट्रांग बनाए, ईश्वर पर भरोसा करें, अपने आप को सरेंडर करें, तो हम नॉर्मल लाइफ में रहते हुए भी हम ऋषि मुनियों की तरह दे सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा नए विषय के साथ अगले बार मिलेंगे। आप सबसे निवेदन है, जो लोग सत्संग में आते हैं, प्रवचन में आते हैं, आप अपने साथियों को, बंधुओं को, परिवारजनों को भी साथ लाने की कोशिश करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो, जिससे कि उनको भी फायदा हो, आपको अगर कुछ लाभ होता है तो दूसरों के भी लेकर आएं, रेगुलर आने की कोशिश करें, जिससे कि आपको भी लाभ हो और सबको लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।